اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا پروگرام ہے ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، جس طرح ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ بہت سارے مہمان ہوں گے، اور آج ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں وہ مجاہد اول جنرل امیر گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب ہیں، جو کہ نوجوانان کشمیر کو بھی جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ بہت ساری آج ان سے کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں، ان کا بیزی ٹائم ہوتا ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں، یہ بھی ان کی بہت مہربانی ہے۔ عبداللہ گل صاحب، ہم آپ کو کوپن ایگن کی فضاؤں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم راجہ غفور صاحب۔
عبداللہ گل صاحب، سب سے پہلے میں کرونا وائرس کی بات کروں گا، میں یورپ کی بات تو نہیں کروں گا لیکن میں پاکستان کی بات کروں گا۔ اس وقت کرونا وائرس کہاں کھڑا ہے پاکستان میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو تمام کوپن ہیگن میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میرا بہت ساری دعا ان کے لیے اور نیک تمنائیں اور اللہ کی خصوصی سلامتی کے لیے درخواست۔ اور کرونا جو وائرس ہے پاکستان میں، اب کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ عادی ہو گئے ہیں، وہ اب اس کو ایک تھریٹ کے طور پر سمجھ ہی نہیں رہے، وہ یہ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کر رہے کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے اور اس سے روزانہ تقریباً 60-70 لوگ جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بری طریقے سے لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو احتیاط نہ کرنا ہے وہ ہے، شروع شروع میں مساجد کے اندر بھی لوگ سوشل ڈسٹینس مینٹین کر رہے تھے، جو کہ اب نہیں ہو رہا، اور اسی طریقے سے جو بازار اور دیگر ایسے پبلک پلیس تھے ان کے اوپر بھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل اب تمام جو ایس او پیز تھے وہ وائلیٹ ہو گئے ہیں۔ یقیناً میرے خیال میں یہ حکومت وقت کا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی حکومت نے ایک انیشیٹو لیا اور قوم نے اس کے اوپر لبیک کہا، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت میرے خیال میں پاکستان میں بچت ہوئی، جو کہ کسی حوالے سے ایک زمانہ تھا جب ہمارے اوپر جب بہت ہی سختی کے وقت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت ہی کم اموات کی شرح تھی، تقریباً کوئی 6,500-7,000 کے قریب، لیکن اب تقریباً روزانہ کے 60-70-50 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں کرونا سے، اور یقیناً یہ ایک میرے خیال میں نیشنل ڈیزاسٹر ہے، اور انسانی تو جو ہے ہی ہے لیکن جو انسانی جان کا ضیاع ہے وہ بہت ہو رہا ہے۔ پھر اس سے کچھ اور بہت سارے گمبھیر مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک تو اس ٹائم پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور اسپتالوں کے جو حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سا بھی کسی کے پاس جائیں، کھانسی ہو گئی تو وہ آپ کو کہتے ہیں کرونا کا ٹیسٹ کرا لو، 7,000-8,000 روپے کا کرونا کا ٹیسٹ ایک غریب آدمی جو ہے وہ کیسے جو ہے برداشت کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب آپ بیرون ملک سفر کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ اور کسی اسپتال میں آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرونا کا ٹیسٹ ضروری ہے، پھر جو ہے یہ بھی آپ کے اوپر اخراجات ہیں، یعنی کہ حکومتی سطح پہ جو کفالت ہونی چاہیے تھی جو شروع میں ہوئی وہ اب آپ کو نظر نہیں آتی، خال خال ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے لنگز بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تیسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ویکسین ابھی حالیہ کہا گیا کہ یہ ویکسین آئی ہے اور کرونا کے حوالے سے اس کے اندر ظاہر ہے بہت لوگوں کے اندر پذیرائی بھی ملی، لیکن میں یہ صرف آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر ویکسین اتنی اچھی ہے اور اس کے اتنی افادیت ہے تو کیا ملک کے جو نامور شخصیات ہیں، جو عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، کیا انہوں نے ویکسین لگوا لی ہے؟ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امریکہ میں جب ویکسین ہوئی تو دیکھا کہ اس ٹائم کے جو صدر تھے انہوں نے باقاعدہ ویکسین لگوائی اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈھارس ہوئی کہ ٹھیک ہے جی، لیکن ابھی تک اس ویکسین کو کسی ذمہ دار شخصیت نے ابھی تک نہیں لگوایا۔ اور پھر یہ کرونا کی وہ ویکسین ہے جو ماضی کا جو کرونا تھا، جو آج سے سال پہلے آیا تھا، وہ اس کرونا کے حوالے سے یہ ویکسین جو ہے وہ ایجاد ہوئی تھی، لیکن اب جو کرونا ہے وہ میوٹیٹڈ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی کیفیت ہے وہ فرق ہے، لوگوں کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہو رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرونا ٹھیک ہو گیا، لیکن اصل میں کرونا ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ میری اپنی پھوپھی جو ہے وہ ان کا ابھی حالیہ کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا، اور ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ جی کرونا ٹھیک ہے، لیکن ان کے لنگز جو تھے، جو پھیپھڑے تھے، وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے اس موذی مرض سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 90% جو ان کے پھیپھڑے تھے وہ خراب ہو گئے، اور بعد میں ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑا، اور وینٹیلیٹر کے بعد وہ پھر جان بلب نہ ہو سکی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے مختلف اس قسم کی جو اشکال سامنے آ رہی ہیں کرونا کی، یہ یقیناً باعث تشویش بھی ہیں، لیکن حکومت جو اقدامات جو کرنے چاہیے وہ نہیں کر پائی، اور اس ویکسین کے حوالے سے خود حکومتی وزیر جو پنجاب کی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ یہ ویکسین لگوائیں گے۔ تو میرے خیال میں راجہ غفور صاحب اور کوپن ہیگن میں بسنے والے پیارے پاکستانیوں، آپ کے لیے یہ بات میرے خیال میں کہہ دینے کے بعد مزید میرے پاس میں کیا بولوں کہ حکومت کے وزیر جو صحت کے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی پہ اور اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں، اور اسی لیے کسی حکومتی اہلکار نے آج تک یہ ویکسین نہیں لگوائی۔ اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں نکلتا کہ یہ ویکسین کوئی بری ہے یا مضر صحت ہے، لیکن اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یہ ماضی کے کرونا کے لیے تھی، جس کا اب موجودہ کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں جب شروع میں اینٹی بایوٹک کوئی بھی دے دی جاتی تھی تو وہ اثر کرتی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، اب تھرڈ جنریشن فورتھ جنریشن میڈیسنز جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے۔
عبداللہ گل صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، واقعی یہ بڑی اچمبے کی بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ ویکسین نہیں لگوا رہے، آرمی چیف نہیں لگوا رہے، وزراء نہیں لگوا رہے، داخلہ خارجہ وزراء نہیں لگوا رہے۔ بہرحال اس پر بات ہوتی رہے گی۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کا ایک کالم چھپا امن کی مشقیں 2021 پاک بحریہ نے کی ہیں، اس کو پاک بحریہ کو امن کا سفیر بھی کہا گیا، اس پر اس نوان سے آپ کا کالم ہے، ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے؟
جی بالکل، بسم اللہ، میں کیوں نہ شیئر کروں، ہمارے لوگ ہیں، آپ اس کو کائنڈلی، میں کوشش کروں گا ابھی، کیونکہ جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت یہی بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ وہ کالم کسی طرح وائس اوور جو ہے اس کا کر دیا جائے۔ میں رائے صاحب آپ کی بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ضرور کوشش کروں گا، اور میں بہت جلد اس کے اوپر آپ کو وائس کے ذریعے بھیجوں گا۔ اس میں ماضی میں میں نے جو پاک بحریہ کے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا، اس کا پاک بحریہ کا عزم صمیم اور بھارت کی سازشیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ 8 منٹ کی ویڈیو کی شکل میں اس کو ریلیز کیا تھا، اس نے بہت پذیرائی حاصل کی الحمدللہ۔ ابھی جو پاک بحریہ کی امن مشقوں کے حوالے سے، دیکھیں دنیا کے اندر اس ٹائم پہ بحریہ کا رول جو ہے وہ دوبارہ بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ پاک بحریہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے متعدد چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو یہ جو امن کی خواہش ہے، اس کو بہت سراہا گیا، اور پوری دنیا کے تقریباً جو ہے 20 ممالک نے اس کے اوپر لبیک کہا، اور پاک بحریہ کی امن مشقوں کے اندر وہ اس کا حصہ بنے، یعنی کہ جو پاکستان کا موقف تھا وہ کھل کے سامنے آیا۔ اور میرے والد مجاہد اسلام جل حمید گل رحمۃ اللہ، انہوں نے آپ کو یاد ہے ایک کہا تھا، بڑا مشہور ان کا فقرہ تھا کہ مستقبل قریب میں کہ جہاں دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہوا کریں گے، اور پاکستان اس کے اندر ایک علیحدہ کردار ادا کرے گا۔ تو آج الحمدللہ پاک بحریہ کی یہ مشقیں جو ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، اور پاکستان کے لیے جو ہمیں میری ٹائم سیکیورٹی ہے، اسی طریقے ہمیں جو سی پیک کے حوالے سے ان کے روٹس کو جو سیف گارڈ کرنا ہے، اور ہمیں جو خاص طور پہ جو بھارت سے جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور چابہار جو پورٹ ہے اس کے حوالے سے جو بھارت کے عزائم ہیں ان کو ہمیں سامنے مد نظر رکھنا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روس جو ہے وہ گرم پانی تک آنا چاہتا تھا، یہ وہی گرم پانی تھا جس کے لیے اس نے افغانستان کے اوپر جو ہے حملہ کر ڈالا، اور نتیجے کے اندر پھر بعد میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ روس نے پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا شروع کیا، اور اب اگر سی پیک کا معاملات بہتر ہوتے ہیں اور افغانستان کے جو مسئلہ ہے یہ پرامن حل کی طرف نکل آتا ہے، تو یقیناً میرے خیال میں ایک بحری راستہ ہمارا کھل جائے گا، और उसके नतीजे के अंदर आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का पहिया जो है वो घूमेगा। लेकिन ये वो सब तब होगा जब आप अमेरिका की गुलामी से बाहर आएंगे। अगर आपने अमेरिका की गुलामी को अपने गले लगाए रखा और आप दो कश्तियों के सवार रहे, यानी कि चीन की कश्ती के भी और अमेरिका की कश्ती के भी, तो फिर आपको विसाले सनम जो है वो शायद ना हो पाया आपका। तो ये बहुत मेरे ख्याल में एक हमारे लिए चैलेंज है सबसे बड़ा, कि पाकिस्तान पहले ये फैसला करे, हुकूमत वक्त जो है वो ये फैसला करे कि उसने किस मुकाम के ऊपर आके खड़ा होना है और उसने आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे नबर्दाजमा होना है। तो ये मेरा जो कॉलम था इसकी बुनियाद जो थी वो इसी बात के ऊपर है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो नेवी को चैलेंजेस हैं बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि गवादर पोर्ट जो है वो आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है और उसके अंदर जो एयरपोर्ट बना है वो हीथरो एयरपोर्ट से बड़ा बना हुआ है और हमने मुस्तकबिल को सामने रख के ये सारी चीज़ें चीन के मदद से बनाई हैं। अब उसको किस तरीके से फाल करना है इसके अंदर हकूमती पॉलिसियाँ मेरे ख्याल में एक बहुत कलीदी किरदार रखती हैं। और अभी जो मुझे ये इल्म है कि चीन हमारी सी पैक के हवाले से जो पॉलिसियां हैं और बिलखसूस गवादर के हवाले से उनसे वो नाखुश हैं, नापसंदीदगी का इजहार किया। इसी हवाले से अभी परसों नोंग रोंग जो कि मेरे दोस्त भी हैं और चीन के पाकिस्तान में सफीर हैं, उनकी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई और दीगर अहम मुलाकातें कल उनकी कुछ लोगों से हुई जिनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता। तो उसके अंदर यही जो उन्होंने एक अपना मुद्दा रखा कि हम आपकी पॉलिसियों से जो है वो अभी उस अंदाज के अंदर हम इत्तफाक राय नहीं रख सकते और ना ही हम जो है वो इनसे सेटिस्फाइड हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस मामले को हमें संगीनी तौर पे इसके एक जायज़ा लेना चाहिए और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी इंशाल्लाह कामयाबी मुंतज़िर है। और हमें ये देखना है कि अमेरिका के लिए एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम अपने 70 साल की जो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी ख़राब ना कर पाएँ, लेकिन अमेरिका को ये बावर करा दें कि अफगानिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान के साथ उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। लेकिन बहरहाल हमारा नेचुरल एलाई जो है वो है चाइना और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो है अमेरिका। अमेरिका ने आते ही 174 F-15SE जहाज जो है वो भारत को देने का ऐलान किया है और ये अभी उनकी हुकूमत को आए हुए 10 दिन नहीं गुजरे थे जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। तो जो 20 उनके मुख्तलिफ अहम पोस्टों के ऊपर भारतीय निजात लोग बैठे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं उसका आप सामने देख सकते हैं। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी भारत के हवाले से तो बड़ी वाजे नज़र आ रही है, पाकिस्तान के हवाले से उनकी डू मोर के मुतालबात जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि कल ही जो उनके आगे मुमकिना तो नहीं बल्कि ऐलान हो चुका है, उनके जो सेंट कॉम के कमांडर, सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं वो उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से एक बड़ी मुफसल गुफ्तगू हुई है जिसके अंदर मेरे ख्याल में खित्ते की सूरत हाल पे और बिलखसूस अफगानिस्तान के ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन ये वक्त है जब पाकिस्तान को कुछ चीज़ें कश्मीर के हवाले से और कुछ चीज़ें सी पैक के हवाले से अमेरिका के साथ मशरूत करनी होंगी। गैर मशरूत मामलात जो है वो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ़ और ज़ौफ़ पहुंचा सके हैं हमारे मकासद को। तो जो भारत है वो, क्योंकि आप के इलम में भी है और हमारे जो सामईन हैं उनके लिए मैं ये इतना गुजारिश कर दूं कि इस टाइम पे जो गवादर से लेके जो गडानी तक और इसी तरीके से जीवनी से लेके पसनी तक जो इलाका है, कलमत बे और दीगर जगहें जो हैं, वहाँ भारतीय खुफिया जो आबदोजे हैं और इसी तरीके से उनकी जो बोट्स हैं वो गाहे बगाहे गर्दिश करती रहती हैं। बहुत सारों का इलम हमारी पाकिस्तान के बहादुर बहरिया को हो जाता है और वो उसका सद्देबाप करती हैं और आपने देखा कि उन्होंने उनकी आपदोज को भगाने में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं और उनको असला जो है वो इस बंदरगाह से, और इस बंदरगाह से तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन इस साहिल समुंदर से जो है वो उन तक पहुंच रहा है। इसलिए हमें अपनी बहरिया को मजबूत करना है और उनके लिए हमें जो एरियल सपोर्ट है वो भी चाहिए है, यानी कि एवैक्स तैयारे या फिर P-3C और आयन जहाज और इसी तरीके से सैप जहाज जो है वो हमें उनको देने पड़ेंगे, ताकि वो एरियल मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं फजाई जो निगरानी है वो उसके ऊपर बखूबी काम करें और पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला इसमें सुरखरू होगा।
अब्दुल्ला गुल साहब, एक तरफ तो ये आपकी बातें, आपका ये कालम है, आपका ये जो आप मजामीन लिखते रहते हैं, टीवी पे आप आते रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने दिल से अपनी आवाम के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल्ला गुल साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि सेनेट में जो है वो करोड़ों की जो है वो ऑफ़र होती है, मुझे भी ऑफ़र हुई, चीफ ऑफ हमारे जो कानून के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो फरमाते हैं कि ये रिश्वत ली जाती है, सेनेटर बिकते हैं, मीडिया सारा ये कह रहा है सेनेटर बिकते हैं और वज़रा भी ये कहते हैं सेनेटर बिकते हैं। अब यही डिबेट जो है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर होती है कि सेनेटर बिकते हैं, उसकी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं और दूसरी तरफ ये हालात हैं, फिर पाकिस्तान क्या सर्वाइव करेगा?
ये बात तो बड़े दुख की बात की राजा साहब, दिल की बात कह दी आपने, लेकिन असल मसला ये है कि आर्टिकल 226 आईने पाकिस्तान के तहत जो है वो सेनेट के जो खुफिया रायदही है वो नहीं हो सकती, उसकी बहुत पीछे वजूहात भी हैं। सिर्फ वजीर आजम और वजीर जो वजीर आला होते हैं उनकी जो है ओपन बैलेट के साथ जो है वो मामला उनका इलेक्शन होता है, बाकी तमाम इलेक्शन, क्योंकि फिर एक बहुत नई डिबेट शुरू हो जाएगी और मैंने खुद इस डिबेट को इनिशिएट किया है और वो ये है कि फिर इस तरीके से तो आप नादरा में आपका हर आदमी रजिस्टर्ड है, फिर आदमी बता दे कि जी फर्ज करें कि अब्दुल्ला गुल जो है वो फलानी पार्टी को वोट दे रहा है और राजा गफूर साहब जो है वो फलानी पार्टी को वोट दे रहे हैं, नादरा में रिकॉर्ड आ जाएगा, इलेक्शन का जो है वो सारा ये ड्रामा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि खुफिया बैलेट नहीं रखा जा सकता, अगर खुफिया बैलेट आप रखेंगे तो ये आइन से मुनहरिफ होने की बात है और आइन को तब्दील करने के लिए दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत है, वो मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से ये सिर्फ बातें करके लोगों के ऊपर ब्लेम्स डाल के, और ज़रूर देखें जब अदालत बात करती है तो मैं ज़रूर अदालत के हवाले से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अदलिया जो है वो बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करवाती है, वो एक नया कानून नहीं बना सकती, ये आईन का आर्टिकल 226 को वो तब्दील नहीं कर सकते, ये असेंबली ही करेगी। इसलिए ये सिर्फ गुफ्तार है, ये गुफ्तार के गाजी हैं, ये कोई किरदार का गाजी यहाँ मौजूद नहीं है, ये सारे के सारे लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे माजरत के साथ ये लगाया हुआ है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन जब अदलिया कोई बात कहती है तो उसमें आप वो इस्तसार करती है, यानी कि वो प्रोब करने के लिए चेक करती है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, वो सवाल उठाते हैं, लेकिन इससे हरगिज ये मतलब नहीं निकलता कि वो उसके ऊपर वो फैसला दे रहे हैं। इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए है कि आईन के जो दायरा कार है उससे बाहर निकल के जो है वो अदलिया काम नहीं कर सकती। आप इसका मैं एक मिसाल दे देता हूँ उस अंदाज में कि जैसे वो हदीस शरीफ नहीं है जो कुरान से मुताबकत ना रखती हो, इसलिए वो कानून नहीं है जो आईने पाकिस्तान के नीचे ना हो, तो ये आपको समझना चाहिए है। और बाकी 70 करोड़ रुपया बोल रहे हैं वजीर आजम साहब, तो फिर अगर इतने ही मजबूर हैं कि अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते, रोटी की कीमत वो नहीं कम कर सकते, पेट्रोल की कीमत बढ़ाए चले जाते हैं, दवाइयाँ की कीमत 550% बढ़ जाती है, जो हमारे बाहर जब कोरोना के दिनों में लोग बेचारे आए उनको कितनी तकलीफ और जिल्लत का सामना करना पड़ा, इतनी कीमतें बढ़ गई किरायों में, PIA के किरायों में कीमतें, जबकि दुनिया के अंदर पेट्रोल प्राइसेस जो थी, फ्यूल प्राइसेस, वो तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर मौजूद थी, लेकिन फिर आपने LNG महंगी की खरीदी, आपने फ्यूल महंगा खरीदा, आप बिजली जो है अभी ज़रा सी हमारी मईशत बेहतर हुई तो आपने बिजली को बढ़ा दिया, 2-2 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया, कमर्शियल रेट उससे भी बढ़ा दिए, तजावज़ कर दिए, वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो फिर जो है वो नोज डाइव का शिकार हो गई। तो ये बहुत सारी, क्या आप सुनेंगे और क्या मैं बताऊँ, बात यह है कि ये एक दुखी दास्तान है और बस इस पर हम यही कह सकते हैं कि मुझे बस एक ही बात जो मैं जुमला बोलना चाहता हूं और मैं अक्सर बोलता हूं कि मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि हमारे हुक्मरान भेड़िए हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख ज़रूर है और शिद्दत से है कि हमारे आवाम भेड़ है। बस यही मुख्तसर सी बात है।
अब्दुल्ला गुल साहब, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुए, ये जो डस्का में हुआ, जो कुछ हमारी तस्वीर दुनिया में मीडिया के हवाले से पेश की जा रही है या पेंट की जा रही है, और दूसरी तरफ इन सारे सिनेरियो में कश्मीर कहाँ खड़ा है?
कश्मीर तो फरामोश कर दिया राज साहब, सीधी सी बात है। कश्मीर पे क्या किया आपने, मुझे बताएं तो सही। आपने कश्मीर के ऊपर कोई फौज ज्यादा लगाई क्या? आपने बॉर्डरों के ऊपर जो है वो मजीद ट्रुप्स जो है डिप्लॉय किए क्या? हुकूमत ने उसके लिए कोई फंड कायम किया? इनकी तो बात ही है क्या, 9 महीने तक तो हुकूमत ने अपना जो वो था कश्मीर कमेटी का सरबराह वही नहीं लगाया था, बाकी तो छोड़े राय साहब, क्या किस बात को करते हैं, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। और फिर आप देख लें कि जो आपने बताया लोगों ने कश्मीर का नाम लेना छोड़ दिया, वो हकूमती सतह के ऊपर वो जो एहतजाज होते थे वो भी छोड़ दिए, जो थोड़ा बहुत आवाम कर रही है वो अपने तौर पे अपने तई लगी हुई है। एक मैं दीवाना आदमी हूँ, पागल ही हो गया हूँ कश्मीर कश्मीर कह कह के, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, गम होता है, दुख होता है अपने लोगों को, अपने जो मादरे वतन के लोग हैं, जो कश्मीरी हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जो खून की वहाँ उनकी होली खेली जा रही है काफरों की जानिब से, हम उसके ऊपर बस यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ कहते हैं कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। ना आपने उनसे तिजारत बंद की, ना आपने उनका, वो कौन कह रहा है लड़ाई के लिए, तिजारत तो बंद कर सकते हो यार, तिजारत आपने बंद नहीं की, फजाई रास्ते आपने बंद नहीं किए, सफारत खाने उनके खुले में हैं, कारोबार जिंदगी चल रहे हैं, बाकी मामलात के ऊपर इंडिया को जाके आप सलामती काउंसिल में वोट दे देते हैं यूएन के अंदर, और उधर कश्मीर का मामला हुआ हुआ है, ये एक तमस्खर है जो होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बस यही बात है।
अब्दुल्ला गुल साहब, फिर क्लियर ही क्यों नहीं एक बार कर सकते कि इस कश्मीर को भूल जाएं जो हमारे पास है, इस पर बातचीत की जाए?
राजा साहब ये तो मैंने जो पहले वाली बात कही है वो तो मायूसी की बात की है, मैं मायूस होने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसी की तैसी मैं अकेला इनके साथ लड़ूंगा, और ऐसी की तैसी मेरे साथ आवाम खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला, हम लड़ेंगे, अपना कश्मीर की 1 इंच जमीन इनको नहीं लेने देंगे। ये वक्ती फैसले हैं, रिवर्स हो जाते हैं ऐसे फैसले, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या हो गया अगर कश्मीर के ऊपर किसी ने फैसला कर लिया, अभी वक्ती जरूरी है कि हमने कबूल कर लिया, पूरी कौम मुस्तरद करती है ऐसे नालायक और ऐसे ना अहल फैसलों को, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, जहाद भी करेंगे कश्मीर के ऊपर अगर जरूरत पड़ी, और इंशाल्लाह ताला अपने हिकमत अमली से इंशाल्लाह ताला ये वक्त आएगा, आप देखेंगे ये सब रिवर्स हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। कौम की जिंदगी के अंदर ये 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाया करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज़ादी मिलेगी। 100 साल के बाद चीन ने जो है क्या नहीं ले लिया था अब हांगकॉन्ग, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं, ऐसे कोई मायूसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ हमें दुश्मनों की साजिशों को और अपनों की जो नाअहली है उसको जरूर सामने मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन हौसला खत्म कर देना, नाउम्मीदी कर देना, नो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मेरे खून के अंदर मेरे जिस्म में एक कतरा भी मौजूद है, कश्मीर के मामले को हम खामोश नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह ताला मेरे तरह लाखों नहीं करोड़ों जवान मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान के बड़े गयूर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कैसे कैसे भारत को सवाल ही नहीं पैदा होता, धूल ना चटा दें हम भारत को, हमारे हाथ किसी दिन खोलें उसके बाद देखें तमाशा होता क्या है।
साहब, चूँकि मैं ओवरसीज़ हूँ, आखिरी सवाल ओवरसीज़ से कर लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे भी बहुत दफ़ा ये बात हुई, बहुत साल पहले भी बात हुई दोहरी शरीयत की, डेनमार्क में तो दोहरी शरीयत मिल गई, अब जो है वो नार्वे वालों को भी दोहरी शरीयत मिल गई, बहुत सारा हमारा भी उन कोशिशों में हाथ है, आपका भी हाथ है। अब एक और चीज़ है, ये जो बहुत सारे कार्ड्स बनते हैं, बहुत सारी फीसें दी जाती हैं सफारत खानों में, ये दे दें, ये कार्ड बना लें, वो कार्ड बनवा लें, तो अब्दुल्ला गुल साहब ये क्यों नहीं एक दफ़ा ओवरसीज़ को एग्जेम्पशन की मोहर दे देते हैं ताकि जान ही छूट जाए?
बिल्कुल दुरुस्त कहा, ओवरसीज तो बेचारे हमारे माथे का जो है ना झूमर हैं, सीधी सी बात है, बेचारे मेहनत मजदूरी करके लाते हैं पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हैं। अभी बल्कि मेरे साथ एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सफर ही कर रहे हैं, मैं सफर में हूँ, तो वो अमेरिका से आए हैं, कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो ये हमें इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ बनूंगा इंशाल्लाह ताला। आपने बहुत अच्छा मुझे जो है वो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस पे कोशिश करूंगा कि तमाम एग्जेम्पशन मिले और आपको बाकी झंझटों से छूट के सिर्फ एक आपके पास कार्ड हो, वो आपका पासपोर्ट हो या कार्ड हो। मैं इसके लिए भरपूर मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा आप सबकी दुआ से और आप लोगों की दवा से इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो हमारे ओवरसीज को मिले, कोई एक कार्ड ऐसा इंट्रोड्यूस हो जिसमें आपकी सारा मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह।
अब्दुल्ला गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामाइन के साथ शेयर किया।
नवाज़िश, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
सामाइन ये थे अब्दुल्ला अमीर गुल साहब जिनकी आपने बात सुनी। सामाइन हमने कोशिश की जितना हम कुछ कर सकते थे, जो आप लोग हमसे बात करते रहते हैं हमारा काम है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। सामाइन कोई बात कहना चाहे तो अदारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है सबके लिए हाज़र है, आपके लिए भी हाज़र है। समय हमारे साथ साथ रहिएगा।